नमस्कार भारत, रविवार 1 नवंबर, मैं हूं निखिल रंजन। बिहार में चुनाव का चौथा चरण आज, 7 जिलों की 55 सीटों के लिए बस कुछ ही देर में शुरू होगा मतदान। बीजेपी का दावा, इस बार बदलाव चुनेगी जनता। सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद ही जाएंगे दिल्ली।
नीतीश की जो सरकार है, ये सरकार से बिहार का भला नहीं होने वाला। यहाँ के आम लोग इस बात को समझ चुके हैं और इसलिए लोकसभा चुनाव से ज्यादा सफलता, ज्यादा समर्थन इस चुनाव में लोगों का मिल रहा है।
सिनाई में गिरे रूसी विमान के ब्लैक बॉक्स मिले, हादसे की वजह का सही पता चलने की उम्मीद बढ़ी। बांग्लादेश में ब्लॉगर अभिजीत राय के प्रकाशक समेत 2 और लोगों की हत्या, हमलावर अब भी पकड़ से बाहर।
इस्लाम इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन बांग्लादेश, द इस्लामाइजेशन इन मेनी सेक्टर्स।
अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। बिहार विधानसभा चुनाव में चौथे दौर के मतदान के लिए 7 जिलों की 55 सीटों पर रविवार को वोट डाले जाएंगे। इन 55 सीटों पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी 26, जेडीयू 21 और कांग्रेस 8 सीटों पर मैदान में है। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी 42, एलजेपी 5, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और लोक समता पार्टी 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि सिनाई प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान को उन्होंने मार गिराया था, लेकिन मिस्र के अधिकारियों ने इन दावों को नकार दिया है। मिस्र के प्रधानमंत्री का कहना है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उसकी जाँच के बाद ही इस बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। रूस ने अपना जाँच दल मिस्र भेज दिया है, जो वहाँ रविवार को पहुँच जाएगा। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉय योहनिस का कहना है कि बुखारेस्ट स्थित नाइट क्लब में जो हादसा हुआ, उसमें सुरक्षा नियमों की अनदेखी का मामला सामने आ रहा है। शुक्रवार देर रात हुए इस हादसे में 27 लोग मारे गए थे। हादसे में बचने वालों का कहना है कि दुर्घटना पटाखों की वजह से हुई। इस दुर्घटना में सुरक्षित बचने वाले ऐसे ही व्यक्ति एलेक्स ने बताया, जो पटाखे जलाए गए वो देखने में बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनकी वजह से वहाँ एक दीवार में आग लग गई। दीवार से होते हुए आग छत तक 10 सेकंड में पहुँच गई। जैसे ही आग दरवाजे की तरफ बढ़ी, लोग घबरा गए और वहाँ भगदड़ मच गई। जैसे ही दरवाज़ा टूटा, आग और भी अधिक भीषण हो गई और पूरे कॉरिडोर में धुआं भर गया। मैं खुशनसीब था कि दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था, जिसके चलते वहाँ से जिंदा बाहर आ सका। दुर्घटना में बचने वाले एलेक्स के शब्द। खबरों के अनुसार क्लब में एक रॉक कॉन्सर्ट चल रहा था, जिसमें करीब 400 लोग शामिल हुए थे। न्यूजीलैंड ने रग्बी वर्ल्ड कप जीत लिया है। लंदन में खेले गए इस मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 34-17 से हराया। इसी के साथ न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 3 बार ये प्रतियोगिता जीती है। फाइनल मैच के दौरान वहां मौजूद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की ने टीम को बधाई भी दी। छत्तीसगढ़ के एक चिड़ियाघर में बाघों को बीफ दिए जाने को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। भिलाई के मैत्री बाग चिड़ियाघर में बाघ, सिंह और तेंदुए जैसे जानवरों को भोजन में बीफ दिया जाता है। विवाद तब शुरू हुआ जब भिलाई संयंत्र प्रबंधन ने 2 साल की बीफ सप्लाई के ठेके के लिए बुधवार को एक इश्तिहार दिया। लगभग 1 लाख किलो बीफ की आपूर्ति की इस बात पर कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि अगर जानवरों को बीफ देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने भविष्य में और कोई मेमोरियल या म्यूजियम बनाने से इनकार किया है। उनका कहना है कि अब वो राज्य में विकास और कानून व्यवस्था पर जोर देंगी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं, आज निखिल रंजन के साथ। आज नवंबर महीने की पहली तारीख है और उत्तर भारत में मौसम ने करवट बदली है। इसके साथ ही हल्की ठंड होने के बावजूद बिहार के 7 जिलों में लोग अपना भविष्य चुनने के लिए बिस्तर से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं। अब से बस कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। क्या है विधानसभा के चौथे चरण की खास बातें, सुनिए पटना से नीरज सहाय की इस रिपोर्ट में।
बिहार विधानसभा चुनाव का चौथा चरण राजनीति में बाहुबली प्रत्याशियों और नेताओं के वोट बल को तोलने वाला साबित होगा। बाहुबली सांसदों पप्पू यादव, आनंद मोहन और शहाबुद्दीन के लिए बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। इस चरण में 7 जिलों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान के 55 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव है। चुनाव में कुल 776 उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी है। मुख्य प्रत्याशियों में नीतीश सरकार के मंत्री रमई राम, मंजू गीता मिश्रा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, पूर्व सांसद लवली आनंद और बाहुबली काली पांडे शामिल हैं, जिनके भाग्य का फैसला लगभग 1,47,00,000 मतदाता आज कर रहे हैं। राजनीतिक गोलबंदी के बीच सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ज्यादातर सीट जीतने की तो बात करते हैं, लेकिन विज्ञापन पर रोक वाले मामले पर बोलने से बचते हैं।
देखिए, चौथे चरण के चुनाव में वही होगा जो तीसरे चरण चुनाव में। हम 50 में 40 प्लस में आ रहे हैं, 42-43, वही हाल इसमें भी रहेगा। अब नीतीश जी लालू जी डपोर संघ की तरह बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बार उनको सत्ता परिवर्तन का रास्ता दिखा चुकी है।
अब पार्टी के दो विज्ञापनों पर आपत्ति जताई है।
हम कानूनी तरीके से आएंगे, हमें कानून पर भरोसा है।
इस चरण के चुनाव से पहले एनडीए के नेताओं ने अपराध के साथ साथ आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान को मीडिया ने काफी उछाला कि बिहार में यदि बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भाजपा के इस बयान पर चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल की स्टार प्रचारक डॉक्टर मीसा भारती कहती हैं कि
डेवलपमेंट के इशू पे बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो आरक्षण की तरफ लेके जा रहे हैं, कभी अनाप शनाप, मतलब एक तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता एक एनडीए के खिलाफ आक्रोशित होकर के महागठबंधन की तरफ उठ दे रही है।
उधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन चौथे चरण के चुनाव में चाक चौबंद इंतजाम करने का दावा करते हैं।
इसके लिए सारे तैयारियां पूर्ण हो चुका है और जितने भी केंद्रीय सुरक्षा बल हैं और स्टेट पुलिस फोर्स हैं, उनकी भी डिप्लॉयमेंट पूर्ण हो चुका है और पार्टी द्वारा कुछ विज्ञापन प्रकाशित की गई है, तो उसके संबंध में आयोग को अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा शिकायत दर्ज की गई, उस पर विचार उपरांत आयोग ने दो विज्ञापन पर फर्दर उसको प्रकाशित करने पर रोक लगाया है और उसके सिमिलर एड्स को भी प्रकाशित करने से रोक लगाया है।
चौथे चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उनमें से ज्यादातर सीटों पर अल्पसंख्यकों के वोट निर्णायक साबित होने जा रहे हैं। यही वजह है कि आतंकवाद का मुद्दा उठाना संवेदनशील हो गया है। यह संवेदना वोटरों को किस ओर ले जाती है ये जानने के लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। नीरज सहाय, BBC पटना।
चौथे चरण के चुनाव की दो अहम सीटों में एक है रक्सौल, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, और दूसरा है मुजफ्फरपुर, जो कभी बिहार की दूसरी राजधानी कहा जाता था। वहां हमारे सहयोगी पहुंच चुके हैं और सीधे चलते हैं उन्हीं के पास ताजा हाल जानने के लिए। रक्सौल से पंकज प्रियदर्शी और मुजफ्फरपुर से मनीष शांडिल्य, स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। पंकज, पहले आप बताइए कि अलग अलग इलाकों का दौरा करते हुए आप आज चंपारण में हैं, क्या दिख रहा है वहां जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
जी निखिल, देखिए इस समय मैं उस मैत्री पुल पर हूँ जो भारत और नेपाल के बीच के मैत्री दोस्ताना रिश्तों के बाद बनाया गया था, और ये पुल जो है भारत के रक्सौल इलाके को नेपाल के बिगंज इलाके से जोड़ता है। और मैं सामने देख पा रहा हूँ कि टेंट पर मधेसी लोग अपना 79 दिनों से जो आंदोलन जारी रखे हुए हैं, रात में भी ये जमे रहते हैं ताकि कोई ट्रकों की आवाजाही न हो सके, तो उनका आंदोलन मुझे यहाँ से, मैं उस पुल पे खड़ा हूँ जहाँ से मुझे साफ दिख रहा है, और इस समय दोनों देशों की सीमाएं सील कर दी गई हैं क्योंकि आज यहाँ मतदान है। अगर हम मतदान की बात करें निखिल, तो आज 55 जगह पे विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है 7 जिलों के, जिसमें प्रमुख हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर, जैसा कि आपने जिक्र किया। और इसमें कई उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है, कई पूर्व मंत्री भी हैं, कई मंत्री भी हैं। सिवान का जिक्र करें तो पूर्व मंत्री व्यासदेव प्रसाद लड़ रहे हैं, जबकि हथुआ से महाचंद्र सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मौजूदा मंत्रियों में परिहार से रामचंद्र पूर्वे हैं और मनोज सिंह हैं कुढ़नी से। तो इस बार 55 सीटें हैं और 55 सीटों पर इस चरण को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद सिर्फ 5 तारीख को जो आखिरी चरण का मतदान होना है, तो सारी जो टीम पार्टियां हैं, सारे दोनों प्रमुख गठबंधन, इन्होंने एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए हैं। मैं पिछले दिनों मोतिहारी में राधामोहन सिंह से भी मेरी मुलाकात हुई थी, वो कैंप किए हुए हैं ताकि अपनी ओर से पूरी कोशिश कर सके। रक्सौल का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है निखिल, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से अजय कुमार सिंह उम्मीदवार हैं, तो महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं सुरेश यादव। लेकिन इस मामले को रोचक बना दिया है श्याम बिहारी प्रसाद ने, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं और वो ब्रिज बिहारी प्रसाद के छोटे भाई हैं। आपको याद होगा सांसद रमा देवी के पति थे जो ब्रिज बिहारी प्रसाद, तो उन्होंने इस मुकाबले को काफी रोचक बनाया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि वो उनकी बढ़त हुई है, आगे वो हैं अन्य लोगों पर, लेकिन मुकाबला इसमें रोचक है। और लास्ट टाइम में बेसिकली देखा जाता है कि दो प्रमुख गठबंधनों में ही मुकाबला रह जाता है, तो दूसरे चुनाव क्षेत्रों की तरह यहाँ भी वही चीज देखने की जा रहा है। और नेपाल की आखिर में निखिल, नेपाल की राजनीति का असर भी रक्सौल में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोग खूब चर्चा कर रहे हैं कि मधेसी आंदोलन को लेकर नेपाल और भारत के बीच जो रिश्ते हैं उसमें क्या हो रहा है।
जी पंकज, चंपारण से बहुत दूर नहीं है मुजफ्फरपुर और वहाँ से मनीष शांडिल्य हमारे साथ हैं। मनीष बताइए कि आप किस इलाके में हैं और वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त?
निखिल मैं अभी मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके में हूँ। यहाँ एक मिडिल स्कूल है, राजकीय मध्य विद्यालय ब्रह्मपुरा, जिसे की एक मॉडल बूथ के रूप में तैयार किया गया है। मैं ठीक उसके बाहर हूँ अभी। मैंने कुछ देर पहले इस बूथ के अंदर जाके देखा था कि क्या तैयारियां चल रही हैं, तो मैंने पाया कि एक तो चूंकि ये मॉडल बूथ है इसलिए ये बाहर से ही बिल्कुल सजा हुआ दिख रहा है और बाकी सुविधाएं यहाँ अन्य बूथों के मुकाबले ज्यादा चाक चौबंद है, चाहे वो मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था हो या उनके पेयजल की व्यवस्था हो, उनके फर्स्ट एड की व्यवस्था हो। तैयारियों में देखा कि चूंकि अब ईवीएम से मतदान होता है तो जो चुनाव अधिकारी हैं वो इस चीज को अंतिम बार जांच कर ले रहे थे कि जो ईवीएम है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। अभी ठीक मेरे सामने दो युवा मतदाता हैं जो कि जो ये सजा हुआ गेट है उसकी तस्वीर खींच रहे थे, जहाँ इसके ऊपर आदर्श बूथ का बोर्ड लगा हुआ है।
मनीष आपने मनीष आपने कुछ मतदाताओं से बात की थी, आइए आगे बढ़ने से पहले हम जरा उन मतदाताओं की बात सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं।
अभी मैं मुजफ्फरपुर शहर में हूँ, मुजफ्फरपुर में चौथे चरण में मतदान होगा। यहाँ का जो सरकारी बस स्टैंड है वहाँ पे कुछ शहरी मुजफ्फरपुर के हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि जब वो मतदान करेंगे तो क्या उनके दिमाग में होगा, कहीं सरकार चुनेंगे।
मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, इमली चट्टी बस स्टैंड मुजफ्फरपुर से हूँ। देखिए अभी तक तो जो भी प्रचार हुआ प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा, लेकिन हम लोग मतदान करेंगे विकास के लिए और इसमें हम अपने शहर की और बिहार की सुविधा देखते हुए मतदान करना चाहते हैं।
किस तरह का विकास का मॉडल, विकास की इच्छा आपके दिमाग में, आप उसका एक खाका है?
शहर का खूबसूरती बढ़े, शिक्षा बढ़े और हमारी बात को सरकार तक पहुंचे।
जी आपका नाम क्या हुआ? पवन जी, ये जो पूरा चार चरणों का प्रचार चला उसमें आपको क्या लगता है कि आरोप प्रत्यारोप ही ज्यादा लगे या मूल मुद्दों की बात हुई?
आरोप प्रत्यारोप तो हर चुनाव में होता आया है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ विकास का भी एक मुद्दा है, जो कि विकास के साथ साथ आपका परिवर्तन का भी मुद्दा है, क्योंकि अब तक पिछली सरकार जो भी अभी तक बनी वो विकास के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, जात पात अमीरी गरीबी के चक्कर में वोटर को गुमराह करते रह गए।
तो नीतीश जी का तो दावा है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में बिहार का विकास किया है, इससे इत्तेफाक नहीं रखते आप?
उन्होंने शुरुआती 5 साल में अच्छा काम किया, लेकिन सेकेंड टर्म में जो है उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पब्लिक उनको फिर से तीसरी बार उनको चुन सके।
जी मेरा नाम अनिल कुमार।
अनिल जी, आपके हिसाब से इस बार कौन से मुद्दे छूट गए चुनाव में जिन पे बात होनी चाहिए थी?
देखिए आरोप प्रत्यारोप लोग करते रह गए, लेकिन विकास पर कोई जो होना चाहिए वो नहीं हो सका।
विकास के अलावा और कोई ऐसे बड़े मुद्दे थे जिन पे बात होनी चाहिए थी और नहीं हो पाई?
जैसे सामाजिक समरसता पर किसी को कुछ बोलने का लगा ही नहीं कि कोई कुछ इस पर, जबकि ये बहुत ज्यादा इस पर अभी विशेष जरूरत है कि समाज में कैसे सामाजिक विशेषता होगी।
संजय जी, ये जो पूरा चुनाव चला उसमें जो तीन चरण अभी तक हुए हैं उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, वो आगे रही हैं पुरुषों के मुकाबले, क्या आपको लगता है कि इस बार पुरुष महिलाओं को इस मामले में आगे निकल पाएंगे?
यहाँ तो पुरुष भी यहाँ से बढ़ चढ़ के लोग जाएंगे ही, मगर घर के महिलाएं लोग भी पूरे जाएंगे वोट गिराने।
हाँ, महिला लोग भी निकलेंगी और हम खुद कहेंगे कि भाई आप लोग भी निकलिए और निर्भय होकर मतदान कीजिए और हम अपने मत का प्रयोग पूरे फैमिली के साथ।
मुजफ्फरपुर के आम लोगों की बात आपने सुनी, मनीष शांडिल्य हमारे साथ हैं। अब मनीष ये बताइए कि ये रमई राम जी का इलाका है, वहाँ किस तरह का चुनावी समीकरण देख रहे हैं आप?
जी रमई राम इस जिले का जो बुछा सुरक्षित क्षेत्र है वहाँ से जदयू के उम्मीदवार हैं, वो लगातार नहीं इस बार 10वीं बार विधानसभा पहुँचने के लिए जो आजमाइश कर रहे हैं, मैं कल उनके इलाके में था, तो उस इलाके की खास बात यह है कि वहां से एनडीए के दो प्रत्याशी हो गए हैं। कहने का मतलब ये कि एक तो जो लोजपा का प्रत्याशी है आधिकारिक, और क्षेत्र में लोगों ने बताया कि एक जो निर्दलीय उम्मीदवार है बेबी कुमारी, उन्हें भी भाजपा का समर्थन बड़े पैमाने पे यहाँ पे मिल रहा है। तो इन इन वजहों से जो मत है एनडीए के वो थोड़े बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सामाजिक समीकरण है और जो दलों का अपना आधार है उसमें थोड़ी सिरमारी हुई है एनडीए के समर्थन वर्ग में, तो इस मायने में उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर दिखती है। लेकिन चूंकि वो लंबे समय से लगभग 50 साल से इस इलाके की रहनुमाई कर रहे हैं विधानसभा में, तो जो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा थी, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई हैं, तो उसका दबाव और उसकी जो नाराजगी है वो उनके खिलाफ जाते हुए दिख रही है।
बहुत शुक्रिया मुजफ्फरपुर से मनीष शांडिल्य और रक्सौल से पंकज प्रियदर्शी इस पूरी जानकारी के लिए। हम अपने अगले कार्यक्रम में भी आपके पास आएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधामोहन सिंह उन केंद्रीय मंत्रियों में शामिल हैं जो बिहार चुनाव के मद्देनजर राज्य में कैंप किए हुए हैं। राधामोहन सिंह पूर्वी चंपारण से बीजेपी के सांसद हैं। हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी ने मोतिहारी में उनसे मुलाकात की और पूछा कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है।
लोगों के दिमाग में साफ साफ चला गया है कि लालू और नीतीश की जो सरकार है, ये सरकार से बिहार का भला नहीं होने वाला है। कि कोई देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य के लिए इतना देना चाहता हो, उस राज्य का मुख्यमंत्री झगड़ा करता हो, तो उस राज्य का कैसे भला होगा। यहाँ के आम लोग इस बात को समझ चुके हैं, और इसलिए मुझको लगता है लोकसभा चुनाव से ज़्यादा सफलता, ज़्यादा समर्थन इस चुनाव में लोगों का मिल रहा है।
लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि मोदी सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो, खासकर बिहार के जो मंत्री हैं, वो कैंप किए हुए हैं और उनकी भी निजी प्रतिष्ठा दांव पर है, और इस जिले में मोतिहारी जिले में भी आपके आप पर भी वही कहा जा रहा है।
मैंने पहले भी आपको बताया कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता, चाहे मंत्री हो प्रधानमंत्री हो, पहले है कार्यकर्ता, तो किसी भी चुनाव को चुनौती के रूप में लेता है। कृषि मंत्री का दायित्व है, उसका भी निर्वहन करते हैं, सप्ताह में 10 दिन में जाके बैठक करते हैं। और मेरा विषय तो इतना है कि जब मुख्यमंत्री जी ने सवाल उठाया कहाँ है, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में जाता रहा हूँ लेकिन पिछले 10 दिनों में नहीं गया हूँ, और मैं उसी दिन जाऊँगा जिस दिन उनका इस्तीफा होगा 8 तारीख को।
क्या भागवत जी के जो आरक्षण पर जो बयान था, क्योंकि रामविलास पासवान जी का बयान आया है कि वो एक गलती थी।
देखिए, किसी भी पार्टी का स्टैंड क्या होता है कि जो उसका अध्यक्ष बोलता है या उसके मुखिया बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी जान चली जाएगी लेकिन आरक्षण पर कोई असर नहीं आएगा, तो लोग समझ गए हैं बिहार के लोग। अब बिहार के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश जी और लालू जी जो कहते हैं कि हम 5% मजहब के आधार पर आरक्षण देंगे, तो संविधान की सीमा है 50%, तो पिछड़े और दलित का आरक्षण काट के ही देंगे। तो अब यहाँ के लोगों के पास मैसेज ये है कि लालू और नीतीश इनका आरक्षण घटाना चाहता है।
लेकिन जो धर्म आधार पर जो आरक्षण की बात है, राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है।
बिल्कुल।
और दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि चौथे और पांचवें चरण का जो चुनाव है वो इस आधार पर महत्वपूर्ण है कि उसमें पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। क्योंकि कल जो अमित शाह जी का बयान आया रक्सौल में कि पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे अगर बीजेपी हारती है।
पहले तो लालू यादव बताए कि वो किस नियत से बोले कि गाय और बकरे के मांस में कोई अंतर नहीं। उनके जो बड़े नेता है कहे कि हमारे ऋषि मुनि गाय खाते थे, ये क्या मंशा है उनकी, ऐसा बोलने का अर्थ क्या है, पहले इसका तो उत्तर दे। हमारे अमित शाह ये बात जो बोलते हैं वही नहीं बोलते हैं, ऐसा लोगों ने देखा है। उनको हमारे इस बात पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि जब हिंदुस्तान की टीम जीतती है तो पाकिस्तान में रोदन होता है, और जब पाकिस्तान की टीम जीतती है तो कई हिस्सों में लोग जश्न मनाते हैं। ये देखा हुआ चीज़ है, इस पर बहुत कमेंट की ज़रूरत नहीं है।
मैं मीसा भारती से मिला था, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बेचारी बेटी को सेट कर दिया।
देखिए, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा ऐसा। प्रधानमंत्री से पहले तो बिहार के बच्चा बच्चा जानता है कि राम कृपाल यादव जो पूरी जिंदगी खपा दे उनके साथ, सामाजिक न्याय की लड़ाई में जब भी उनको संकट आया तो संजीवनी का काम राम कृपाल यादव ने किया। लेकिन राम कृपाल यादव की टिकट काटकर और मीसा भारती को देना, या मुंशीलाल राय, इतने बड़े नेता आरजेडी के रहे, पूरी जिंदगी उसमें खपाई, पता चला जो उसका टिकट काट दिया, आज दाएं बाएं में अपने दोनों बेटा को टिकट दे दिया। इस स्थिति में प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, आम आदमी ये बात बोलता है।
आरएसएस ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक तरह से सपोर्ट बेस दिया भाजपा को, तो संघ यहाँ पर क्या उसी तरह सपोर्ट दे रहे हैं आप लोग?
संघ सपोर्ट देना क्या, मैं खुद संघ का स्वयं सेवक हूँ। अब इस सवाल का उत्तर हम क्या दे आपको, इसका यही उत्तर है कि मैं खुद संघ का
ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर, संगठन के स्तर।
देखिए उस संगठन में जो भी गया होगा उसने राष्ट्रभक्ति सीखा होगा, देश प्रेम सीखा हो, और उससे निकला हुआ व्यक्ति कहीं भी होगा तो राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत बनाने के लिए काम करें।
मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आप कितने आगे हैं?
देखिए भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, और आपने देखा होगा महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, झारखंड का। हमारी पार्टी सोनिया गांधी और नीतीश लालू की तरह कंपनी नहीं है, एक पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, संसदीय बोर्ड है, और वो उचित समय पर योग्य निर्णय करता है।
बीजेपी के सांसद राधामोहन सिंह से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी। नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर निखिल रंजन के साथ, और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में कल हादसे का शिकार हुए रूसी विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि अब इस दुर्घटना के बारे में कुछ सटीक जानकारी मिल पाएगी। वहीं मिस्र के प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री ने विमान में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंकाओं को नकार दिया है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमल चौधरी से।
मिस्र के अधिकारियों का कहना है कि सिनाई प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। बचाव दल मलबे से शव निकालने में लगे हुए हैं। शनिवार को गिरे इस विमान में सवार सभी 224 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गए हैं। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि हादसे के कारण का सही पता लग सकेगा। मिस्र के प्रधानमंत्री शरीफ इस्माइल ने कहा कि फ्लाइट डेटा की जांच और विश्लेषण के बाद दुर्घटना के असल कारणों का पता लग सकेगा। उन्होंने कहा विशेषज्ञ ब्लैक बॉक्स डेटा की जांच कर रहे हैं, हमें उसके परिणाम का इंतजार है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि इस विमान में कुछ गड़बड़ थी। हम केवल इतना कह सकते हैं कि ये हादसा तकनीकी कठिनाई की वजह से हुआ, लेकिन जांच कर रही विशेषज्ञों की टीम ही केवल इस पर कुछ ठोस रूप से कह सकती है। मिस्र के प्रधानमंत्री शरीफ इस्माइल के शब्द। वहीं मिस्र के परिवहन मंत्री हुस्साम कमाल के अनुसार विमान में किसी भी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। उन्होंने कहा अगर पायलट विमान में किसी भी तरह की दिक्कत की शिकायत नहीं करता है तो टेक ऑफ से पहले केवल नियमित रखरखाव की जांच की जाती है। इस विमान के पायलट ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की, ना ही नियमित जांच में कुछ ऐसा निकलकर सामने आया। दुर्घटना से पहले हमें इसमें किसी भी तरह की खराबी की कोई जानकारी नहीं मिली थी और ना ही हमें कोई SOS कॉल की गई थी। मिस्र के परिवहन मंत्री हुस्साम कमाल। इलाके में सक्रिय इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने इस विमान को मारने का दावा किया है, लेकिन रूस के परिवहन मंत्री ने इन दावों का खंडन कर दिया। शुरुआती खबरों में कहा जा रहा था कि विमान के पायलट ने आपात स्थिति में विमान उतारने की अनुमति मांगी थी। इस बीच जर्मन एयरलाइंस लुफ्तांजा और एयर फ्रांस KLM ने कहा कि जब तक इस हादसे का कारण ढूंढने की जांच चलेगी वो इस रूट के इस्तेमाल से बचेंगे। शनिवार की सुबह शर्म अल शेख से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये विमान गिर गया था।
कल हादसे का शिकार हुए विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे थे अमल चौधरी। आपको याद होगा कुछ महीने पहले बांग्लादेश में एक ब्लॉगर अभिजीत राय की हत्या कर दी गई थी। कल बांग्लादेश में उनके प्रकाशक की भी गला रेतकर हत्या कर दी गई। राजधानी ढाका में हथियारबंद हमलावरों ने ब्लॉगर अभिजीत राय के दोस्त अहमदुर रशीद तुतुल के दफ्तर को निशाना बनाया। उन्होंने अहमदुर और दो अन्य लोगों की धारदार हथियारों से घायल कर दिया। घायलों में एक की हालत गंभीर है। इस घटना के कुछ ही घंटों के बाद एक दूसरे प्रकाशक फैसल आरिफिन डिपोन को ढाका के एक अन्य इलाके में कत्ल कर दिया गया। ढाका में मौजूद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शेख मारूफ हसन के मुताबिक दोनों घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है। रहीम नाम के एक व्यक्ति की स्थिति काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। वहीं तुतुल को सिर पर गहरी चोटें आई हैं। ढाका में रहने वाले एक प्रकाशक रॉबिन एहसान ने BBC से बातचीत में कहा कि वो देश में बढ़ती हिंसा की वारदातों से चिंतित हैं। उन्होंने कहा
टुटुलर जेटा হয়েছে টুটুল তো আসলে প্রকাশক এবং প্রগতিশীল
तुतुल एक प्रकाशक था और वो प्रगतिशील साहित्य को प्रकाशित करते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने धर्म के खिलाफ कभी भी कुछ प्रकाशित किया। वो विज्ञान समेत अन्य चीज़ों पर किताबें प्रकाशित करते थे, इसी वजह से उन पर हमला हुआ। पिछले हमलों की तरह इसे रात के अंधेरे में नहीं बल्कि सबके सामने दिन में अंजाम दिया गया। ऐसे में ये किसी भी देश की तरक्की के लिए बाधा है। हम अपने लिए सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉगरों पर हो रहे हमले और उनकी हत्याओं से साफ है कि सरकार हमारी सुरक्षा कर पाने में असमर्थ है। ढाका में रहने वाले प्रकाशक रॉबिन एहसान। दूसरी तरफ जर्मनी में निर्वासित जीवन बिता रहे ब्लॉगर आसिफ मुइद्दीन ने बीबीसी को बताया कि अधिकारी इस तरह के केस की जांच करने में हिचकिचाते हैं। उन्होंने कहा,
I think they are capable to do it. But they don't want to do it because it is a very big
मुझे लगता है कि वो इसकी जांच करने में सक्षम है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें बहुत बड़ा राजनीतिक खेल है। बांग्लादेश में इस्लाम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। देश के कई हिस्सों का इस्लामीकरण हो रहा है और बहुत से लोग कई इस्लामिक संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। जर्मनी में निर्वासन में रह रहे ब्लॉगर आसिफ मुइद्दीन। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष लोगों के खिलाफ हाल के दिनों में कई हमले हुए हैं। अभिजीत रॉय की फरवरी में ढाका में उनके ही घर पर हत्या कर दी गई थी। और अब आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है ये सब जान लेते हैं अमल चौधरी से, जो स्टूडियो में अखबारों पर नज़र डालने के बाद आ चुके हैं।
जी निखिल, आज की मुख्य खबरों की बात करें तो बिहार के चौथे दौर के मतदान और मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप में जो विमान दुर्घटना हुई है वो हर जगह छाई हुई है। लेकिन अगर इसके अलावा खबरों की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन का देश के विकास के लिए सहिष्णुता को ज़रूरी बताना हर तरफ छाया हुआ है। इसी खबर के साथ अमर उजाला ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति द्वारा केंद्र सरकार को दी नसीहत को भी प्रकाशित किया है। वहीं संघ से जुड़ी एक खबर है जिसका शीर्षक है, मुस्लिम आबादी बढ़ने से संघ चिंतित, जनसंख्या नीति की समीक्षा की मांग। इसमें संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल ने एक प्रस्ताव भी पास किया है। वहीं दैनिक भास्कर की एक खबर है जो शायद दीपावली में पटाखे फोड़ने के शौकीनों को सचेत कर दे। खबर का शीर्षक है, लैब में साबित पटाखों में सीसा और पारा। इसके अनुसार देश में पहली बार पटाखों को चार श्रेणियों में बांटकर उनकी जांच की गई है और ये बताया गया है कि ये कितना हानिकारक हो सकता है। और इसके साथ ही भास्कर में एक तस्वीर अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की प्रकाशित की गई है जिसपे वो ज़मीन पर पीठ के बल लेटे हुए हैं और उन्होंने एक बच्चे को अपने हाथ में उठाया हुआ है।
बहुत शुक्रिया अमल अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। और अब उन खबरों पर नज़र डाल लेते हैं जिन पर आज पूरे दिन हमारी नज़र रहेगी।
भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद इंडियन क्लेव में रहने वाले परिवार भारत में आज प्रवेश करेंगे। 5, 9 और 17 नवंबर को भी कई परिवार बांग्लादेश से भारत आएंगे। इसी साल 1 अगस्त को दोनों देशों ने अपनी सीमाओं पर बने एनक्लेव्स में रहने वालों को ये हक दिया था कि वो रहने के लिए भारत या बांग्लादेश में किसी एक देश को चुन सकते हैं। दिल्ली में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों से पर्यावरण मुआवजा शुल्क ECC 1 नवंबर से ही वसूला जाएगा। SMYR कंसोर्टियम लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में इसे 1 दिसंबर से लागू करने के लिए अपील की थी जिसे चीफ जस्टिस HL दत्तू और जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने नकार दिया। दूरसंचार कंपनी BSNL अपनी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस MMS रविवार से बंद कर देगी। कंपनी के अनुसार ऐसे कई ऐप्स हैं जिनसे वीडियो मैसेज भेजना और अधिक आसान हो गया है, इसके चलते कंपनी ने ये फैसला लिया है। भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान वो वहां के उपराष्ट्रपति जूसुफ कालला से मुलाकात करेंगे। इंडियन सुपर लीग का 27वां मैच मुंबई सिटी FC और एल्टिको डी कोलकाता के बीच खेला जाएगा। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा।
और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में चौथे दौर के मतदान के लिए 7 जिलों की 55 सीटों पर रविवार को वोट डाले जाएंगे। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि सिनाई प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान को उन्होंने मार गिराया था, लेकिन मिस्र के अधिकारियों ने इन दावों को नकार दिया है। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस योनिस का कहना है कि बुखारेस्ट स्थित नाइटक्लब में जो हादसा हुआ उसमें सुरक्षा नियमों की अनदेखी का मामला सामने आ रहा है। इस हादसे में 27 लोग मारे गए थे। न्यूजीलैंड ने रग्बी वर्ल्ड कप जीत लिया है। लंदन में खेले गए इस मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 34-17 से हराया। छत्तीसगढ़ के एक चिड़ियाघर में बाघों को बीफ दिए जाने को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। भिलाई के मैत्री बाग चिड़ियाघर में बाघ, सिंह और तेंदुए जैसे जानवरों को भोजन में बीफ दिया जाता है। विवाद तब शुरू हुआ जब भिलाई संयंत्र प्रबंधन ने 2 साल की बीफ सप्लाई के ठेके के लिए बुधवार को एक इश्तिहार दिया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने भविष्य में और कोई मेमोरियल या म्यूजियम बनाने से इनकार कर दिया है। बीबीसी समाचार।
समाचार मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। नमस्कार भारत में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला हेमंत कुशवाहा ने। आपसे ठीक 1 घंटे बाद मुलाकात होगी विश्व भारती में। तब तक के लिए नमस्कार।